اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة توبہ کی آخری دو آیات، لقد جاءکم رسول، صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں، صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں. کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں؟ یہ اگزاس نہیں چل رہی اوپر، بڑے چل رہے کیوں نہیں چل رہے؟ پچھلی دفعہ بھی نہیں چل رہے تھے، میں نے چلوائے تھے. ذمہ دار حضرات کیوں توجہ نہیں کرتے؟ تو پوچھا کہ اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں، فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا، بس یہی کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن گیا، بس یہی ہے. اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں. اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں آپ کی زندگی میں. کیوں جی آپ چلے ہیں اگزاس؟ تو یہ غیر ذمہ داری کب تک ہے؟ خیانت، غیر ذمہ داری، میرے سامنے بھی بیٹھنے والے اور میرے غائبانہ بھی خیانت کرتے ہیں، غیر ذمہ داری کرتے ہیں، کملی والے کے مجمع کے ساتھ بد دیانتی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ خیانت، غیر ذمہ داری، غفلت کیوں کرتے ہیں؟ میں حیران، مجھے ان کے مزاج پہ حیرانگی ہے. خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. ایک دم ماحول حفظ ختم ہو گئے. اب پتہ نہیں کوئی شیشے کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہوں گی، وہ بھی مجھے جا کے بند کروانی ہوں گی تاکہ ویکم بنے. یعنی ہر چیز مجھے یہیں سے کرانی ہوگی. بے حس لوگ ہیں، احساس کی دنیا مر گئی ہے. سارے مضامین چھین لیتے ہیں، ان کی خیانت مجھ سے مضامین چھین لیتی ہے. اللہ سے جو مانگ کے آتا ہوں، ان کی خیانت میرے مضامین چھین لیتی ہے. کملی والے کے مہمانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور سینہ تان کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں خدمت کرتے ہیں. عجیب ان لوگ ہیں. پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ पर मैं बस फकीर से शहंशाह बना देता, ये इसका फायदा। सूरत तौबा की आखिरी दो आयात। कोई बादशाह गुजरा हो अल्लाह वाला, किताबों में सात सलातीन का तस्करा है। सात सलातीन, सात बादशाह ऐसे हैं जो अल्लाह के वली थे। सात फुकहाए मदीना का तस्करा है जो अल्लाह के वली थे। सात बादशाहों का जहां तस्करा है, उन सात बादशाहों की जिंदगी में, किताबों में या ख्वाबों में, ख्वाबों से मुराद कोई ऐसा शख्स हो जो उनकी जिंदगी से अहवाल पूछे कि आपकी जिंदगी में अहवाल क्या है। कितने हमारे बड़े ऐसे हैं जो हदीस की सनद खुद सहबे हदीस से पूछते थे, इमाम तिरमिजी से, इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, बड़ों बड़ों से कुछ पूछ लेते थे, ये फला हदीस है, इसकी सनद क्या है, इसका कमाल क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका नुजूल क्या है वगैरह। ये बात कोई खास नहीं है, आम है। अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं, खुद इमाम बुखारी से पूछ लेते थे ख्वाब में कि ये हदीस कैसी है और इस हदीस के बारे में आपकी राय क्या है, आपने ये हदीस कहां से ली थी वगैरह। इसी तरह कुछ ऐसे भी अल्लाह के दोस्त हैं, गुजरे हैं, अब भी यकीनन होंगे, जो खुद उस हस्ती से पूछ लेते हैं, अब भी होंगे, उस हस्ती से पूछ लेते हैं, उस हस्ती से कि आप ये बताएं कि आपने सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है इसको आजमाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकात, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो फरमाया कि जितने भी सात सलातीन हैं, सात सलातीन, सात बादशाह गुजरे हैं, जितने भी, उन सात सलातीन की जिंदगी का नचोड़ और उनके वजायफ में ये चीज शामिल थी, उनके जो खास वजायफ थे, उनके जो खास मामूलात थे, उनकी जो खास तस्बीहात थी, उनके जो खास वजीफे और जिक्र थे, उन खास वजीफों और जिक्र में ये सूरत तौबा शामिल है। ये सूरत तौबा शामिल है। सूरत तौबा से मुराद सूरत तौबा की आखिरी दो आयात, ये शामिल है उनकी जिंदगियों में शामिल। एक बादशाह गुजरे हैं, एक दफा फरमाने लगे, मेरी जुबान पे सूरत तौबा की आखिरी दो आयात मेरी जुबान से खत्म हो गई हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, नहीं पढ़ता। दो में से एक चीज होगी, या मेरी मौत आने वाली है या मेरी बादशाहत मुझसे छीनने वाली है, क्योंकि जब तक ये आयत तो मेरी जिंदगी में रहेगी, मेरी बादशाहत मुझसे नहीं छीन सकती। फिर लोग बुलाए गए जिनको याद थी, उन्होंने उनको दोहरवाया, लेकिन उनको याद नहीं होती थी। चंद ही दिनों के बाद मौत आ गए। उस बादशाह का नाम था सामानी। मैं ताशकंद में उनके मजार पे गया। कितने बड़ों ने, मखदूम नूह साहब, हाला सिंध, हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती है, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह आला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। तो किसी ने उनसे जराजी उम्र का रास पूछा कि کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورت توبہ کی آخری دو آیات میں، مختوم نوح صاحب، اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، پر اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اور اس سے بھی اگلی بات ہے، اس سے بھی اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی. آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئیں، منگتے بھکاری بن گئیں، محتاج بن گئیں، مفلس بن گئیں، ان کی منگ نسلیں. اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا. کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے. یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے. اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَا، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے. وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں. اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں. وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، جس کا تعویذ آپ 26 محرم کو لکھیں گے. کل ہے 26 محرم کو، غنا ہے اس آیت میں، غنا. اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت. ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا، یہ کفایت ہے. 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے، تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کاک کر دے. کاک تنکا، تنکا، میرا اللہ چاہے تو ایسا کر سکتے. انیس سو چھیاسی میں ایک بابا جی نا مجھے वो एक मोटरसाइकिल ही होती थी, पतले पतले व्हीलों वाली, आगे प्लास्टिक का वो लगा होता था। है? मैं होंडा 50, बाबा जी चलाते रहे हैं, होंडा 50 चलाते रहे। हाँ, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। बाबा जी आज भी जिंदा है, और आज भी बाबा जी 86 को कितने साल हो गए? 38, 38। आज भी वो बाबा जी हैं। एक वाक्या अपना सुनाया, मैं किफायत की बात कर रहा हूं, इन दो आयात में किफायत है। कहने लगे मैं जज का रीडर हूं, एक जज है उसमें उसका रीडर हूं, तो मेरी तनख्वाह इतने 100 है और जज की तनख्वाह इतने 1000 है। अब वही 1000 लाखों में है, अब वो शायद 100 हजारों में है। कहने लगे कि जज मुझे कहता है कि 15 तारीख के बाद, हद 20 तारीख के बाद मेरा हाथ बहुत तंग होता है। तो मैंने कहा कि मेरा हाथ तंग नहीं होता। कहा वजह क्या है? कहा मुझे बरकत मिली है। कहा वो क्या होती है? तेरी तनख्वाह तो मुझसे चौथाई गुना से चौथाई गुना ज्यादा है, ए थोड़ी है। तो मैंने कहा ये देखिए मेरा पेन है, इसमें मैं स्याही भरता हूं और रीडर लिखता हूं, जनाब जो फरमाते हैं मैं आपका फरमान लिखता हूं जज साहब का। इसको 24 साल हो गए इस पेन को, रब ने इस पेन में मेरी किफायत कर दी है। मैंने एक छोटी सी मिसाल जज साहब को दी, ये मुझे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे मुझे सुना रहे हैं वाक्या। मुझे वाक्या गर्मी थी, खरबूजों का मौसम था, खरबूजे थे, मुझे ये सुना रहे। ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने इस आयत में, इन दो आयत में किफायत रखी है, किफायत रखी। गैब से जरूरतें पूरी होना, गैब से मसाइल का हल होना, गैबी निजाम का मुतवज्जे होना, इन दो आयत में रखी है। और फिर अल्लाह पाक ने इन दो आयत में किफालत रखी है। वो कैसे? एक कमाने वाला होता था, सारा घर खाने वाला होता था, जरूरतें पूरी होती थीं, बच जाता था, सारे कमाने वाले सारे खाने वाले हाय हाय लगी है कि शाम और कल का क्या बनेगा। वो किफालत वाला हाथ हट गया है, किफालत वाला हाथ हट गया है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खिजां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी जल गए। हाँ, और ये जो आप तावीज 26 मुहर्रम को लिखने वाले हैं, ये मेरा इजाद करदा नहीं है। सदियों से सदियों से सदियों से अल्लाह के वलियों का आजमूदा है और अल्लाह के वलियों का तजर्बा शुदा है, और अल्लाह के दोस्तों ने इसे सदियों से आजमाया, सदियों से आजमाया, और मखलूक के खुदा को सदियों से इससे फैज मिला, इससे नफा मिला, और इससे खैर मिली सदियों से। आप ये देख लें। जो तोहफा सदियों से आजमूदा है तो उस तोहफे को हम क्यों भूले? सिर्फ मुझसे एक गलती हुई है। अब आप पहले देखें हुई है या नहीं हुई। मैं बिलफर्ज अगर कहता हूं कि मुझसे एक गलती हुई है, गलती ये हुई है कि मैंने आपको क्यों बताया। मुझे चाहिए था ये 26 मुहर्रम का ये तावीज मैं अपनी नस्लों के लिए रखता जो कि आम रिवाज में है। पीर साहब का तावीज है, اور پیر صاحب نے اپنے خاص خلیفہ کو، خاص خادم کو یا اپنے نسلوں کے لیے دیا؟ عمومی اعلان ہے، عمومی ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارا نسل در نسل چلتا یہ عمل ہے، یہ عمل ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے، عمومی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، اور ہے ایسے ہی ہے۔ لیکن تسبیح خانے نے کوشش کی ہمیشہ، آج سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی، کہ جو سینے کے راز ہیں وہ اللہ کی مخلوق اور کملی والے کے غلاموں کے سینے میں چلے جائیں۔ بس یہ فیصلہ ہے، کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں، کہ سینے میں چلے جائیں۔ یہ بتائیں میرے کملی والے کا ہر امتی انشاءاللہ بخشا جائے گا، بخشا جائے گا، ہر مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ ان کی بخشش کرے گا، اور جس کو بخشا جائے گا، جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو پھر وہ تو شاہی مہمان ہوئے، جنتی مہمان ہوئے، تو جنتی مہمان کو تو جنتی تحفے دینے چاہیے، اور وہ جنتی تحفہ کیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، یہ جنتی تحفہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سات سلاطین، یہ تو ہیں وہ جن کے تذکرے ہیں، ورنہ کتنے بادشاہ ایسے غدر ہیں۔ ملک مظفر ان سات سلاطین میں نہیں، یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے جن کے نام پہ مظفر نگر، جن کے نام پہ مظفر آباد، مظفر نگر یو پی، مظفر آباد کشمیر، مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ۔ ملک مظفر بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور صرف بادشاہ نہیں تھے، ولایت کے تاجدار بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، بڑے ان کے واقعات ہیں۔ اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے، اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50-52 سال حکومت کی، اور اللہ کے ولی تھے، اور کتنے لوگ ہیں۔ ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں ہے یہ، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں۔ اور یہ آیت ان کی زندگی کے معمولات میں، کسی کی زندگی میں ایک دفعہ، کسی کی 100 دفعہ، کسی کی 1000 دفعہ، کسی کی کتنی بار، ان کے معمولات میں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، سامانی ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے، بادشاہوں کی ایک لڑی گزری ہے، ان کے بادشاہ در بادشاہ، کہ میرے منہ سے یہ آیت نہیں نکل رہی، بھول گئی ہے، اور یاد دلانے کی کوشش بھی کی تو کوشش کی نہیں نکل رہے۔ آخر کار یہ آیت جب نہیں نکلی تو فرمایا پھر لگتا ہے وقت، اور وقت آگے، وقت آگے۔ ایک صاحب، ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھوں لوح محفوظ میں اس آیت کو کن حروف سے لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا قرآن کے کچھ حصے ہیں جو لوح محفوظ میں خاص لکھے گئے ہیں، سارا قرآن خاص ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو خاص الخاص ہیں۔ ان میں فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، یہ خاص الخاص، یہ خاص الخاص۔ جنات کے ہاں، جن ہستیوں کا جنات سے واسطہ اور تعلق ہے، ان سے سنا ہے کہ جنات کے ہاں اس آیت کی بڑی قیمت ہے، اور جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے کمالات ہیں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اس آیت کے فائدے، اس آیت کے نفع، اور اس آیت کے کمالات سنوں گا انشاءاللہ۔ جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے فائدے ہیں، عجیب فائدے، عجیب فائدے اور عجیب نفع۔ और जिन्नात इस आयत को बहुत पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक ये जिन्नात इस आयत को पढ़ते हैं, आप गौर से सुने, यहां तक पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे, यहां तक पढ़ते हैं कि करोड़ों दफा इस आयत को पढ़ लेते हैं। जितनी उनकी उम्र है उतनी उनकी तादाद है, फिर तादाद भी ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है, ताकत के मुताबिक, ये लफ्ज गौर से सुनिएगा, ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है। जितनी ताकत होती है, जितनी कुव्वत होती है, उतनी तादाद बढ़ती है। करोड़ों 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 की तादाद में जिन्नात इसको पढ़ते हैं। फिर इस आयत में एक तासीर और है, ये मिट्टी को सोना बनाती है, मिट्टी को सोना बना देती। मेरे हमारे एक जानने वाले थे मुंशी असलम, पुराने पटवारी रिटायर थे, एक जगह नाम जगह है वही जोगियां, वहां रहते थे। बूढ़े थे तो उनको सोना बनाने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो लोग समझते थे शायद इनको सोना बनाना आता है, तो फिर दूर दूर से लोग उनका नाम, उनकी आवाज सुन के गांव का सफर करते थे, बड़ा दूर का। उस वक्त वो इतनी ट्रैफिक, बसें वगैरह थी नहीं, पहुंचते थे पैदल का सफर करते थे, फिर मुंशी साहब के यहां हफ्तों दिनों रहते थे। एक दफा कहने लगे कि एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि सुनाए आप सोना बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं, मैं छटाकों में बनाता हूं, आप धड़ियों में बनाते हैं, धड़ी धड़ी कहते हैं 5 किलो को, मैं 50 ग्राम के करीब बनाता हूं, आप 50 किलो 5 किलो के करीब बनाते हैं, बनाता मैं भी हूं, बनाते आप भी हैं, मुझे 5 किलो वाला नुस्खा दे दे। तो मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, पहले हम आपस में तारफ ना कर ले, बिल्कुल तारफ कर ले। कहां से आया? फला जगह से आया। अच्छा माशा, जेब में पैसे हैं? उन्हें कहा हाँ, आप परेशान ना हो, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा। अच्छा ठीक है, घर का खर्चा छोड़ के आयो? हाँ। कितना घर है, क्या है घर में? घर को कुछ हालात खराब हैं, ये है वो है, घर के हालात, जिंदगी के हालात। तो इन्होंने जूता उतार लिए, 3 4 5 उसको रखे। उन्हें कहा तू कहते हैं मैं सोना बनाना जानता हूं, घर के तेरे हालात खराब हैं। कहा कि मुझे जो आके कहते हैं मैं सोना बनाना जानता हूं, मैं उसकी शक्ल देखता हूं, हुलिया, अगर उसका हुलिया बर्बाद होता है तो वो कहते हैं मैं ठीक हूं, वाकई बनाना जानता है, और उसका हुलिया ठीक होता है तो समझ ले नहीं बनाना जानता, क्योंकि सोने बनाने का ताल्लुक है घर फूक तमाशा देख, सारा घर फूक दे, फूकने से मुराद आग लगा दे, फिर तमाशा देख। और सोना बनाने का नुस्खा उन्होंने जो बताया था वो मैं बता देता हूं, हरमल परमल से पति, हरमल हरमल बूटी होती है, परमल बूटी होती है, से पति 3 पत्तों वाली बूटी होती है, हरमल परमल से पति, धड़ी तरामे ते रत्ती तैयार, धड़ी कहते हैं, 5 किलो तांबे पे 1 रत्ती डाल तो हरा सोना, हरमल परमल और से पति, ठीक, और धड़ी तरामे ते रत्ती 1 रत्ती, ये दवाई दा बना, सारा तांबा सोना, और क्या जरूरत है। उम्र के आखिरी हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में एक दफा मुंशी साहब वाले साहब रहमतुल्लाह के पास आते थे, बैठते थे, दिन गुजारते थे सारा। सुबह का टाइम आता था बस का, फिर शाम का बस जाता था, वो चले जाते थे, सारा दिन गुजार के जाते थे। एक दफा कहने लगे, ये अल्फाज हैं मेरे सुने में, आखिर सारी उम्र जख मारे कुछ नहीं लदा, सारी उम्र मैंने वक्त जाया किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। कहने लगे एक दफा किसी ने मुझे बताया ये सोना इस तरह बनता है, मैंने तांबे का देगचा लिया, उसमें सामान डाला, उसको ऊपर से बंद किया, ऊपर आटा लगाया, आटा लगा के ऊपर मिट्टी लगाई, और मिट्टी लगा के फिर मलमल का कपड़ा मिट्टी में भिगोता गया, उसके ऊपर मलता गया, मलता गया, मलमल का कपड़ा, उसका मुंह बंद कर दिया, खुश किया, तांबे की देगची के नीचे देगचा था, मुझे दिखाया भी उसका तलवा निकला हुआ था, देगचे के नीचे आग दे, उसने जो चाख मारा और वो फटा, नीचे तलवा निकला गया, ऊपर से वो ऊपर का ढकना उड़ा गया, वो ढकना जो टूटा वो सारे टुकड़े में लगे और मैं जख्मी हो गया। कहने लगे ये सोना बन रहा है, और कहा कि एक दफा ऐसा हुआ किसी ने सोना बनाने का नुस्खा बताया, एक दूसरे साहब कहने लगे मेरे वाले साहब को, मेरे वाले साहब ने कहा कि मैं चीनी वाली बनाने वाली मशीन बनाऊंगा, चीनी बनाने वाली, कहा चीनी बनाने वाली मशीन जो टूटी, किसी बंदे की दोनों टांगे कटी गई हैं, टांगे उधर अब्बा इधर, करफूक तमाशा देख सोना बन रहा है। जिंदगी की आखिरी अय्याम में कहने लगे मैंने सारी जिंदगी जाय की है, मुझे अगर पता होता ना कि सूरत तौबा की आखिरी दो आयात में कायनात के सोने बनाने के राज हैं, कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाता है, अब तक मैं 1 करोड़ से ज्यादा ये आयत पढ़ चुका होता, मैं दिन रात एक कर देता, दिन रात क्या कर देता, एक कर देता दिन रात, और मैं इसी आयत को पढ़ता, फिर मैंने जिंदगी सह कर दी। बेटा था इकबाल, उसको कहने लगा बेटा मैं बूढ़ा बहुत हो गया हूं, ख्याल करना सोना बनाने वाली इस जिंदगी में ना जाना, वो लफ्ज कहते थे ठरक, सोना बनाने वाली ठरक में ना जाना, इस जिंदगी में ना जाना बेटा, अगर कभी सोना बनाने का शौक भी पैदा हो तो सूरत तौबा की आखिरी दो आयत को दिन रात पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, पल पल सांस सांस पढ़ना, और हर लम्हा हर लहजा पढ़ना, और सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ना, इसी में सोना भी है, इसी में चांदी भी है, इसी में हीरे भी हैं, और इसी में जवाहरात भी। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको ये दो आयातों की बरकत, इन दो आयात की खैर और इन दो आयात की तासीर आपके जीव में उतरी गई है, जीव में उतर गई है, ये बात गौर से सुनिएगा, जीव में उतर गई है, दिलों में उतर गई है, आपके जीव में उतर गई है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, इसलिए मैं आते ही हैरान हुआ, यहां बड़े बड़े कलंदर और जिम्मेदार बैठे हैं, उनको महसूस नहीं हुआ था कि एग्जॉस नहीं चल रहे हफ से, उनको पता नहीं क्यों महसूस नहीं हुआ, मैं हैरान हूं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं तस्बीखाने की खिदमत करने वालों को, जान माल वक्त लगाया फायदा नहीं होगा, अल्लाह से दिल दिमाग और दुआ मनवाओ, अल्लाह हमारे दिल दिमाग और दुआ के ताले खोल, दिल दिमाग और दुआ के जो ताले लगे हैं अल्लाह खोल मनवाओ, मेरे लिए भी अपने लिए भी। जब ताले लगे होते हैं फिर कुछ नजर नहीं आता। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपके दिलों में उतर गई है कि इस आयत के अंदर कमालात हैं, इस आयत में बरकात हैं, यह भी खुशकिस्मती है। हक का वाजे हो जाना, गौर से सुनिएगा यह लफ्ज, हक का वाजे हो जाना कि हक हक है, ये किसी किस्मत वाले को नसीब होता है, वरना सारी जिंदगी गुजार के मौत की वादियों में चला जाता है, उसको हक नजर नहीं आता, और हक के गैर में जिंदगी गुजारता है और हक के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता। उसको पता ही नहीं है कि हक क्या है, और इसी जिंदगी में सारी बिसात लपेट के चला जाता है, हक तक नहीं पहुंचता। जिसका तस्बीह खाने का हक होना जिसके दिल में आ गया है, तस्बीह खाने का हक होना जिसके दिल में आ गया है, और शैतानी वसवसों को फिर उसने जगह नहीं दी, तो समझ ले दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत कि उसके दिल में तस्बीह खाने का हक होना आ गया है और फिर वसाविस को जगह ना दी। ये भी खास तौर पे मैं बात कह रहा हूं, वसाविस को जगह नहीं दी, बदगुमानियां, शक, वसाविस, तबसरे, सुनी सुनाई, उनको जगह नहीं दी, तस्बीह खाने का हक होना उसके दिल में अल्लाह ने उतार दिया। इसलिए फरमाया, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है, अल्लाह उसे अपनी खैर की समझ देता है, उसको फिर अल्लाह वो समझ दे देता है जो उसको खैर की राहों की तरफ लेकर चलती। ये तावीज सदियों से आजमाता है और सदियां ही इस तावीज को लेके चल रही हैं। मैं तो डाकिया हूं, सिर्फ सफीर हूं, मैंने बता दिया आप, चीज तो मेरी नहीं है, कलाम अल्लाह की, वही मदीने वाले पे, कमली वाले पे उतरी, बताने वाले आले रसूल, असहाबे रसूल, पहुंचाने वाले मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालेहीन, सदियों से हम तक ये तवातुर से सच्ची चीज पहुंची है। फिर उनके अपने तजर्बात, फिर उन अपने मुशाहदात हैं, और उन तजर्बात और मुशाहदात को बताने वाले भी सच्चे, वही भी सच्ची, लफ्ज भी सच्चे, हुरूफ भी सच्चे, सच्चे हुरूफ, सच्चे अल्फाज, फिर ये हुरूफ से मिलके बनी है, छोटे छोटे हर्फ जो हैं, जो अलिफ बा से लेकर या तक छोटे छोटे हरूफ हैं, उनसे मिलकर ये आयतें मिली हैं और उनसे मिलके बनी हैं, उन हरूफ से मिलके बनी, उन हरूफ से मिलके बनी। और वो हरूफ कितने हैं, आए मैं आपको जरा बताऊं, आप जरा गौर से सुनिएगा। अलिफ पूरे कुरान में 48,872 सबसे ज्यादा पूरे कुरान में अलिफ है। अलिफ सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्या है, अलिफ। ता पूरे कुरान में 5,791, 5,791। जीम पूरे कुरान में 3,358। खा, खा 2,482। जा 1,597। जाल 1,597। जा 1,683। शीन 2,489। जौद 1,696। जोए जिसे जा कहते हैं 882। सबसे कम हरूफ इसके हैं, सबसे ज्यादा हरूफ किसके हैं, अलिफ के। गैन 1,220 पूरे कुरान में। काफ 6,813। लाम 34,310। नून 27,838। हा 26,535। बा 11,420। सा 1,405। हा 1,927। दाल 5,993। रा 12,055। सीन 6,802। 6,000। स्वाद 2,492। तो 1,274। आइन 9,931। फा 8,228। काफ 10,300, 10,380। मीम 28,922, वाओ 25,352 या 25,717। आपका सारा लकत जाकुम से आखिर तक फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम तक ये सारे हुरूफ हैं, और यह सारे हुरूफ मिलके आपस में ये दो आयात बनी हैं, और इनकी ताकत के सारी उम्र सोना बनाने की मेहनत करने वाला कहता है जिंदगी मैंने जाया कर दी, और काश कि मेरी जिंदगी में सूरत तौबा की आखिरी दो आयात आ जाती, मेरी जिंदगी में ये दो आयात आ जाती, मैं मिट्टी को हाथ लगाता तो सोने का बन जाते। आपका क्या ख्याल है, आपके मुशाहदे में इसकी क्या तासीर आई है, कौन बताएगा? आपके तजर्बे में इसकी क्या तासीर आई है, आपने इसका क्या फायदा पाया? तावीज जो लिखा, हर साल लिखते हैं 26 मुहर्रम का, उससे आपने क्या नफा पाया? 26 मुहर्रम के तावीज से कितना फायदा पाया, क्या नफा पाया, कौन बताएगा? अच्छा ठहर जाए, मैं पहले एक दो चीजें बता दूं फिर पूछता हूं। एक तो याद रखिएगा, इस आयत की जो शुरू होती है लाम से शुरू होती है, अजीम में आखिर लफ्ज मीम है, हैं, और मीम पे इंतहा होती है। लफ्ज लाम की जो तासीर है, और लाम के बाद अगला लफ्ज कौन, हर्फ कौन सा आता है, हैं, और वाओ के बाद, और लाम से पहले कौन सा हर्फ आता है? मैं कहता हूं लाम के बाद मीम आता है, हुरूफ तहजी की तर्तीब में जाए। अल्लाह वालो, हुरूफ तहजी अलिफ बा की अगर तर्तीब में जाए तो लाम के बाद कौन सा हर्फ आता है? मीम आता है ना, मीम आता है। इस मीम को और लाम और मीम को जमा करें तो सारी कायनात मीम के साथ जुड़ी हुई है। मीम मोहम्मद है, मीम महमूद है, बहुत मीम की कायनात में राज है, बहुत ज्यादा है। इस तावीज को लिखते हुए जितना यकीन होगा, और इस तावीज में अल्लाह ने जो इस दो आयात में हरूफ जमा किए हैं ना, खुफिया हरूफ जमा किए हैं अल्लाह ने इन दो आयात में, वो अनोखे हरूफ जमा किए हैं। मेरा जी ये चाहता है मैं इज्तमाई तौर पे बैठ के इन आयात को हम बैठ के दोहराएं। वो क्यों, उसकी वजह सुन लें। आप में से किसी को आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। जिसको आती होगी और जिसको नहीं आती, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसकी तासीर पा चुके होंगे। मैं वो फौत हो गए मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप उनके हमने सामने बैठते आप नहीं पहचान सकते कि ये वो शख्स है जितने इतने अरब सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ी, इतने अरब कलमा पढ़ा, इतना अरब दरूद पाक पढ़ा, और बड़े वज़ाइफ पढ़ते थे, अरब अरब करोड़ नहीं, आप नहीं पहचान सकेंगे, और हम पहचान नहीं सकेंगे क्या उसने इतना पढ़ा, बगैर तो समझ नहीं आती थी। लेकिन जब वह ऐसे सूरत कुल वाला एक दफा पढ़ता था, एक पूरी जमात आ जाती थी, फरिश्तों की, औलिया, जिन्नात की, सालेहीन की, उसके साथ आके पढ़ना शुरू कर देती थी, और वो सिर्फ उसी को नजर आती थी, वो सिर्फ उसी को नजर आती और किसी को नजर नहीं आती थी। अहलुल्लाह सालेहीन की पूरी जमात, पूरी एक टीम आ जाती थी, फरिश्तों की, औलिया, जिन्नात की, और नेक अरवाह की एक पूरी टीम आ जाती थी, और उसके साथ पढ़ना शुरू कर देती थी। फिर फायदा क्या होता था? फायदा यह होता था कि वो उसकी तादाद पल में लाखों से ज्यादा निकल जाते थे। फौत हुए तो मैं उनके घर ताजियत के लिए गया, तो मैंने सबसे पहले जाते ही कहा कि वो तस्बी कहाँ है। उस तस्बी के वो कई दफा धागे बदल चुके थे कि धागे घिस जाते थे। मैं गाड़ी में तस्बी लेके बैठा तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे, कहने लगे ये तस्बी जरा दिखाएं। मुझसे कहने लगे तस्बी मेरे हाथ में खुद ब खुद चल रही है और मेरे मुंह से जिक्र खुद ब खुद जारी हो गया, और हकीकत यही है, बहुत बहुत चल गए और मेरे मुंह से जिक्र खुद बहुत जारी हो गया, खुद बहुत जारी हो गया। कुछ लोग मजमे में ऐसे होते हैं जो उनकी हमारे यहां कोई हैसियत नहीं होती, या हैसियत होती है तो हम दुनियादाराना हैसियत होती है, ठीक है दुनियादार आदमी है, लेकिन उस करीम शहनशाह की बारगाह में उसकी बड़ी हैसियत होती है, उसका बड़ा मकाम होता है। जब सारा मजमा किसी वजीफे को बैठ के पढ़ता है, सारा मजमा, तो फिर एक दूसरे की तासीर एक दूसरे में मुंतकिल होती है, एक दूसरे की तासीर एक दूसरे में मुंतकिल होती है, मुंतकिल होती। और जब मुंतकिल होती है तो जिसको तासीर नहीं मिली उसको तासीर मिल जाती है, जिसको सवाब नहीं मिला उसको सवाब मिल जाता है। और मजमू में एक फायदा और भी होता है, अगर कि कोई इस काबिल है, अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी बारीक बात है, हसास बात है, कोई इस काबिल होता है, कोई इस काबिल होता है कि उसका वजीफा मुंह पे मार दिया जाता है। अल्लाह कहते हैं तेरी पेशानी पे शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है, तेरी लकीरों में जुल्मत लिखी है, तो उस मजमे की बरकत से अल्लाह पाक उसकी भी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह पाक उसके भी कबूल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मजमे ऐसे होते हैं जिन मजमों में बैठे वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसी तौबा करता है या ऐसा रुजू करता है कि जो उसकी वजह से कबूलियत रुकी होती है, और उसी की वजह से फिर हो जाती है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे, बारिश बारिश खुशखुशाली हो गए, पर मैं आपके मजमे में एक ऐसा बंदा है जिसने सारी जिंदगी, अल्लाह पाक फरमाने लगे ऐ मेरे नबी सारी जिंदगी उसने मुझे नाराज किया है, इसके होते हुए कभी दुआ कबूल नहीं होगी, इसको कहें मजमे से निकल जाए फिर दुआ कबूल हो। आपने ऐलान फरमाया इस मजमे में जो शख्स भी है जिसने सारी उम्र अल्लाह को नाराज किया वो निकल जाए, उसकी वजह से बारिश होगी। अब उसके निकलने का इंतजार हो रहा, कोई इधर देखे कोई इधर देखे कोई इधर देखे। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मिल बैठ के इसे पढ़ें, गौर से समझिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मिल बैठ के इसको पढ़ें। अब उसके निकलने का इंतजार हो रहा, थोड़ी ही देर हुई बादल आए और बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से अर्ज किया या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि बंदा निकले, बंदा तो नहीं निकला और बारिश शुरू हो गई, वही आई कि मेरे हबीब मेरे नबी मेरे रसूल मेरे पैगंबर जिसकी वजह से रोकी हुई थी उसी की वजह से हुई थी। जिस वक्त आपने कहा ना उसे निकल जा, तो उसने उसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू किया कि मौला सारी उम्र तो तूने पर्दे रखे हैं, आज पर्दा फाश होता है, बस अब तो मेरा सखी मेरा शहनशाह माफ कर दे, तौबा करता हूं और तौबा भी आखिरी दर्जे की इंतहा पे करता हूं, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। और कहा उसने माफी कोई ऐसी मांगी है تو اس کی معافی کی برکت سے سب کی معافی قبول اور اسی کی وجہ سے بارش ہو گئے. یا اللہ اس کا دیدار ہی کروا دے, اسے دکھائی دے. پر میں جب دوست نہیں تھا تو میں نے اس کو چھپایا, اب تو دوست بن گیا اب تو اور اس کے پردے رکھوں گا, کیوں اس کو دکھاؤں؟ بعض اوقات مجموع میں پڑھنے سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو بظاہر عقل انسانی میں نہیں آتے. مجمع میں وہ چیزیں ملتی ہیں جو بظاہر سوچ میں نہیں آتے. مجمع میں کوئی یقین والا, کوئی اعتماد والا, کوئی درد والا, کوئی سوز والا, کوئی سوچ والا, کوئی جذبے والا, کوئی ایسا ہوگا جس نے اس آیت کو سینکڑوں پڑھا ہوگا, ہزاروں پڑھا ہوگا, لاکھوں پڑھا ہوگا. کہنے لگے ایک صاحب, ایک صاحب مزار کے پاس گیا تو میں کلمہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنے لگا. کلمہ پڑھا, پھر درود ہدیہ کیا, پھر سورت اخلاص ہدیہ کی. تو مجھ سے کہنے لگے, سارے تحفے ہیں, ایک تحفہ ایسا ہے جو میں زندگی بھر پڑھتا رہا, وہ مجھے دے دو, مجھے کوئی نہیں دیتا. پوچھا کون سا؟ کس سورت توبہ کی آخری دو آیات, یہ دنیا میں بھی جنت بنا دیتی ہے, قبر کو بھی جنت بنا دیتی ہے, مجھے یہ پڑھ کے دے دو. تو کہنے لگا میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ صاحب کہنے لگے, کہا میں نے بس پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو پڑھتے پڑھتے میں خود ڈوب گیا, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. بس یہ کیفیت ہو گئی. اور کہا میں ایسا اس پڑھنے میں فنا ہوا, میرے سامنے قبر کے نقشے سارے ہٹ گئے اور قبرستان کا نقشہ آ گیا. کسی کا چھوٹا گھر, کسی کا بڑا گھر, کسی کا چھوٹا نظام, کسی کا بڑا نظام, اور یہ نقشہ میری زندگی میں ایسے کھلتا چلا گیا. اور کسی کی قبر میں راحت, کسی میں پھول, اور کسی کی زندگی میں دھول, اور کہیں زندگی میں آتش, ایسی میری نقشے سامنے کھلتے چلے گئے. اور کہا نا معلوم میں کتنی دیر بیٹھا رہا, کتنی دیر بیٹھا رہا, کتنی دیر بیٹھا رہا, اور کہا کہ ظہر کی اذان ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میں تو تقریباً 4-5 گھنٹے تک مراقبے میں بیٹھا رہا. پرانا قبرستان تھا اور پرانے قبرستان سارے کے سارے نیچے کے نقشے میرے سامنے آ گئے. اور میری آنکھ کھلی تو بس محسوس ہوا کہ میں یہ آیت ہی پڑھ رہا تھا اور اس آیت کو پڑھ کے انہیں ہدیہ دے رہا تھا, اور اس آیت نے مجھ پہ کشف القبور کھول دیا. سارا کشف, قبروں کا کشف, زیر زمین کائنات کا کشف, عالم برزخ کا کشف. یہ بتائیں, فرشتوں کو اللہ نے میری آنکھوں سے, آپ کی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے, اگر وہی اللہ پردے ہٹا دے کیا قادر نہیں ہے؟ اللہ نے جنات کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے, اللہ وہی پردے ہٹا دے کیا قادر نہیں ہے؟ بولے نہیں. اللہ چاہے پردے دے دے, اللہ چاہے پردے ہٹا دے, تو ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. پر کہنے لگے اور صاحب مزار جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہنے لگے مجھ سے فرمانے لگے, مجھے تجھے یہ بہت پسند ہے, مجھے پڑھ کے ہدیہ دو. کہا بس میں پھر پڑھنا شروع ہو گیا. دونوں آیت ایک بار ختم ہوتی تھی, دوسری بار ختم ہوتی تھی, تیسری بار پتا نہیں کتنا پڑھا, گھنٹوں پڑھا, اور مجھے اپنے وجود کی خبر نہ رہی. ظہر کی اذان ہوئی تو ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا کہ جی آپ نے تقریباً 5 گھنٹے ایک ہی کیفیت میں بیٹھے رہے, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. فنا, فنائیت. ये तोहफा आपको मिला है जिंदगी का, ये तोहफा मिला है जिंदगी का, और इस तोहफे में अजीब निजाम है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह, जिनसे सुहरावर्दी सिलसिला, हमारे ये हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह सुहरावर्दी सिलसिला है, और बड़े बड़ी हस्तियां सुहरावर्दी सिलसिले की हैं। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह फरमाए, जब भी नक्श लिखते थे यही कुछ लिख के दे देते थे, उनके नक्श में तासीर होती थी, ताकत होती थी। सोचे तो सही, हमें कितना बड़ा तोहफा मिला, हमें कितनी बड़ी ताकत मिली, हमें कितनी बड़ी तासीर मिली, हमें कितना बड़ा कमाल मिला, कितना बड़ा निजाम मिला। क्या ख्याल है, कुछ तादाद रोजाना मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया करें? 7 बार ही पढ़ लें सुबह शाम, 7 बार सुबह शाम पढ़ लें, 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, 1 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें। कितने खुशकिस्मत होंगे अगर उन्होंने कोई वजीफा जारी नहीं रखा हुआ, तो कोई वजीफा अपनी जिंदगी में जारी रखना चाहते हैं, और कोई वजीफा अपनी जिंदगी में वजीफा बनाना चाहते हैं। कोई चीज ऐसी है जो कहते हैं हमें दे दे, तो कितने खुशकिस्मत होंगे जो इसको 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लेंगे। जब वो शेख मुनीर साहब बैत हुए ना, तो किसी महकमे से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनसे कहा 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, 1 तीसरे कलमे की पढ़ लिया करें, 1 इस्तिगफार की, जो हमारे सिलसिले की तस्बीहात हैं। तो मुझसे कहने लगी, इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकूंगा? तो मैंने कहा, अल्लाह दिल खोल देगा, अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। फिर वही थे जिन्होंने अरबों पढ़ा, अरबों पढ़ा। मुझसे एक दफा गलती हुई मुझसे, ये उन्होंने असल में जनरेटर एग्जॉस्ट चलाया होगा ना, तो एग्जॉस्ट चलाने में उन्हें झटका लगा होगा, इसलिए थाली के लिए उन्हें एग्जॉस्ट याद आया होगा, मजमे में बैठे हुए बेहिस्सों को भी उनको भी, के कमली वाले के मेहमानों का एहतराम क्या होता है। तो क्या कर रहा था बात, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका खत अबकरी में छाप दे, और खत लिखते थे मुझे, अब भी वो डाक में खत होंगे कि मुर्शिद मेरा इस महीने का, इस 2 महीने का इतना जिक्र हुआ, इतनी तस्बीह हुई, इतना अमल हुआ, वो खत लिखते थे। मैंने कहा ये अबकरी में छाप दो। गालिबन 7-8 की बात होगी, 2007-8, 6-7-8, बस अंदाजा शायद इससे। वो तो मुझे जो फोन आए, ओहो, बाद में एहसास हुआ, खासा दी गल अम्मा सामने करनी अच्छी ना ही, लोगों का बर्तन नहीं था, भांडा छोटा था, बर्तन छोटा था। क्या धोखा छाप दिया, क्या फरेब छाप दिया, ये ऐसा मुमकिन है? वाकई मुझे मुमकिन तो नहीं है, वो भी सच कह रहे हैं, इसलिए तो मैं अपनी गलती कह रहा हूं कि मैंने गलती की, वो अपकरी में छाप दी खत। अच्छा, मैंने इसलिए नियत से छापा कि लोगों को भी तरगीब हो, लोग भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। जिन हजरात का कोई जिक्र मुकरर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मुकरर है, रोजाना उन्होंने इतना पढ़ना है, वो तो उसी में फना हो। जिनका कोई अगर जिक्र मुकरर नहीं है, अगर वो फैसला कर ले, वो फैसला कर ले कि हमने 1 करोड़ दफा पढ़ना, 1 करोड़, हाँ कोई मसला नहीं, 1 करोड़। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह करोड़पतियों में शामिल कर देगा। कौन से करोड़पति? आखरत वाले करोड़पति, जो आखरत के करोड़पति थे और आखरत के अरबपति करोड़पति जुनेद बगदादी, पीर पीर गिलानी, पीराने पीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये आखरत के करोड़पति थे, ये आखरत के करोड़पति, करोड़ आखरत के। करोड़ की तो अब हैसियत है, पहले तो लफ्ज लाखों दरूद लाखों सलाम लफ्ज होता था। लाख कोशिश की, गौर से समझे फिक्रे, लाख कोशिश की पर ना माना, वो लख बड़ी बात होती थी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आला हजरत रहमतुल्लाह की नात है, लाखों सलाम, लाख कोशिश की, लाख मेहनत की। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। मुझे कहते थे आए नाने लाखापति को जाके सताते हैं, मैं तो एक तरफ बैठा होता था, नाना लाखापति दुआ कर रहा होता था, दुआ करता कहता था नाना मैं अल्लाह को जाके कहूंगा अल्लाह तेरी इबादत कबूल न करे, मैं कहता हूं करे वो जारियां करे तेरी मर्जी, ना कहना ना कर। मैं हजूर को जाके कहता हूं तेरा दरूद ना सुने, लगता ऐसे कि हजूर के साथ पता नहीं उसका ताल्लुक होगा। ओहो नाने की मैंने जो जारियां देखी थी ना, मालूम अब एहसास होता है नाने का अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ था। वो अल्लाह की नाराजगी पे बेचैन हो जाता था, वो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी पे बेकरार हो जाता था। नाना मैंने पूछा नाना लाखापति को है, कह रहे हमारे नाने के पास लाख रुपया था उस दौर में, लाख रुपया था, लाख रुपया था। जब आने का 5 किलो घी देसी घी आता था नाने के पास लाख रुपया था। 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख। तो आप इस आयत को 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ले, इंशाल्लाह तो कह दें। एक बाबा जी थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था, हाजी साहब थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। मुझे 4 दिन उनके पांव सीधे करने की, जूतियां सीधे करने की सादत मिली, खिदमत में हिस्सा था। अभी चंद साल पहले फौत हुए। कई अरब रुपए का मंसूबा था, उसके चीफ थे, उसके चीफ थे। एक दफा मुझसे कहने लगे लाहौर में दूर जंगल में ही कोई वापड़ा टाउन बना है, उसमें मुझे 1 कनाल का प्लाट मिला है, उसकी मैं किसने कैसे अदा करूं। जंगल में ना वापडा टाउन है कोई दूर, 1 कनाल का प्लॉट मिला है। चीफ होते थे उस दौर में, पजीरो पजारो, उनके पास गाड़ियां होती थी, लेने होती थी, मुझसे 600 रुपया कभी 2000 उधार ले जाते थे। हैरान कौन बात, उधार ले जाते थे 200 कभी कभी 600 कभी 500 कभी 1000। एक दफा फरमाने लगे घर के पंखे नहीं है, वो पैसे जरा दे दे मैं फिर दे दूंगा, तनख्वाह आएगी। और फिर मुझे तनख्वाह में दे गए तो कहा कि कोई दिन ऊपर तो नहीं हुआ, वादे के मुताबिक दे गए। ये जिंदगी थी एहतियात की। और गाड़ी अगर सरकारी इस्तेमाल करते थे, मैंने अपने हाथों से मीटर लिखते देखा, गाड़ी का इतना मीटर खर्च किया, इतना पेट्रोल उसमें डालना है। और दफ्तर का सरकारी कलम इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो सरकारी कागज है, सरकारी कलम। अजब इंसान थे, अजब इंसान थे। तो आप फैसला कर लें कि आप इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ेंगे। उनके सामने लोग इंशाल्लाह नहीं कहते थे, कोई उनके सामने गुजरता नहीं था, जिसको देख लेते थे वो कबूल हो जाता था। इंशाल्लाह नहीं कहते थे बंदे उनके सामने, आप तो कबूल हो जाएं और क्या सादत। क्यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे मेरे बंदे तूने नेकी की थी या अल्लाह तूने तौफीक ही नहीं दी थी, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तू नियत कर लेता ना मैं तुझे तौफीक दे देता, मेरे बंदे तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। नियत तो कर ले। अगर आपका कोई वजीफा तायुन नहीं है, उसमें तायुन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अकरी कोई तस्बीह खाना मुझे कोई वजीफा दे दे, तो इस वजीफे को दिन पढ़ें, रात पढ़ें, वुजू बे वुजू पढ़ें, इस आयत मुबारका को, इन दोनों आयात को याद कर लें, बस याद कर। अच्छा, इस आयत में दीदारे मुस्तफा 100% 100% है इंशाल्लाह, कमली वाले का दीदार, आले रसूल के साथ मुलाकातें, असहाबे रसूल के साथ मुलाकातें इस आयत मुबारक में। अनोखा कोई राज है, अनोखा कोई निजाम। मैं तो चाहता हूं कि मजमा बैठ के इसको पढ़े, थोड़ा सा 7 दफा अगर हम बैठ के पढ़ लें। कितनी बार? 7 बार अगर हम बैठ के इसको पढ़ लें, और इस नीयत से बैठ के पढ़ें, इस नीयत से, इस जज्बे से बैठ के पढ़ें, इस नीयत और इस जज्बे से बैठ के पढ़ें कि या अल्लाह, इसकी जो पहले नीयत सुन ले जरा गौर से, अल्लाह जो इसकी तासीर, ताकत, बरकत और कमाल तूने सारे के सारे आले रसूल, आका कमली वाले, आले रसूल, असहाबे रसूल, औलिया, सालेहीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, कामिलीन को तूने अता की, और अल्लाह एक वो तासीर और ताकत है जो तेरे इल्म में है। अल्लाह मुझे तेरे इल्म वाली ताकत और तासीर भी चाहिए, तेरे मेरे साथ बोले, तासीर भी चाहिए, फिर भी मैं अल्लाह मुतमिन नहीं हूं, मेरे अंदर तलब ज्यादा है, तड़प ज्यादा है। तो बंदे फिर क्या मांगता है? अल्लाह पूछे तो या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर अता हो, अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर भी अता फरमा, इसकी ताकत भी अता फरमा, इसकी बरकत भी अता फरमा, और इसका कमाल भी अता फरमा अपनी शान के मुताबिक। बोले आप क्या मांगते हैं? आप थोड़ा मांगते हैं या ज्यादा? जी ज्यादा मांगे, थोड़ा क्यों मांगते? अल्लाह के खजानों से ज्यादा मांगे और बहुत ज्यादा मांगे, थोड़ा क्यों मांगते? आए फिर अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं, और दरूद भी वही पढ़ेंगे जो हमारा दरूद शिफा है, जो हर दफा पढ़ते हैं, और दरूद शिफा भी वो है जो बड़ी ताकतवर चीज है, बहुत बाकमाल चीज है, दरूद शिफा, बहुत बाकमाल चीज, दरूद शिफा बहुत हैरत अंगेज चीज है, दरूद शिफा बहुत हैरत। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बेअददे कुल्ले दाइन व दवाइन مبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء، مبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء، مبارك وسلم. اب ایسا کریں हम ना एक काम करें, हम ना चार चार पांच पांच की ऐसे टोलियां बना लें, ऐसी जमातें टीमें बना लें, और इसको सिर्फ 7 दफा बैठ के आपस में दोहराना है। क्या ख्याल है? और एक वादा सुना, वादा वादा गौर से सुने, मैं लफ्ज वादा कह रहा हूं। फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्ते उन नशिस्तों को, उन महफिलों को तलाश करते हैं, अर्शों से आके उन महफिलों में बैठते हैं, और अर्शों तक उनकी सफें चली जाती हैं, और जब वो अल्लाह के जिक्र की महफिल खत्म होती है तो अल्लाह पूछते हैं कहां से आए या अल्लाह तेरे बंदे? फरमाया क्या मांगे? जन्नत। पूछा, देखी है जन्नत क्या? या अल्लाह नहीं देखी? फरमाया, अगर देख लेते तो मैं अल्लाह और मांगते। अल्लाह पाक फरमाते हैं, गवाह रहो फरिश्ते, मैंने जन्नत उनको दे दी। जब मोहब्बत होती है ना, बात जानबूझ के बढ़ाई जाती है। अल्लाह ने बात को जानबूझ के बढ़ाया। अच्छा फरिश्तों, ये बताओ किस चीज से पनाह मांगते थे? या अल्लाह, जहन्नुम से। फरमाते हैं फरिश्तों, उन्होंने देखी है? नहीं अल्लाह, देखी नहीं, सुनी है। तो अगर देख लेते या अल्लाह और ज्यादा पनाह मांगते। तो अल्लाह बात फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उनको जहन्नम से पनाह दे दी, जहन्नम से निजात दे दी। अब इसी इसना में फरिश्ते एक बात और कहते हैं कि या अल्लाह, कोई एक बंदा था, वो इस महफिल में ऐसे ही आया था, उसका मकसद ये महफिल नहीं थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इसकी बरकत, तासीर, कमाल, कबूलियत इतनी है कि वो भी बख्शा गया और उसको भी जन्नत मिल गई। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखेंगे। अच्छा, ये नियत कर लें कि मैं 1 करोड़ पढ़ने की आज से नियत कर रहा हूं। आज से 7 दफा पढ़ लेता हूं, 1 करोड़ पढ़ने की नियत कर लेता हूं। पर मैं एक बंदा था, उसने 1 पैसा रखा और कहा, या अल्लाह मैं सारी उम्र पैसा पैसा जोड़ूंगा और जोड़ के ना मैं हज पे जाऊंगा। पैसा पैसा जोड़ता रहा, मौत आ गई, हज ना कर सका। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्यामत तक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया जो उसकी तरफ से हज करेगा, क्योंकि इसके हज का सच्चा जज्बा भी था, साथ उसकी मेहनत भी थी, साथ उसकी तलब तड़प और सच्चा जज्बा था। आप ऐसा करें, आज 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली ना, तो 7 दफा पढ़ ले, 1 करोड़ में से 7 काम हो जाएगा। ऐसे ना, 1 करोड़ में कितना काम होगा? 7 दफा काम हो जाएगा, मतलब मसला हल हो गया। मसला हल, एक तो मसला ही हल हो गया और परेशानी ही दूर, और काम बन गया। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। 1 करोड़ दफा पढ़ ले, अब पढ़ेंगे 1 करोड़ दफा हैं? अल्लाह को अपनी सच्ची नियत दिखा ले। एक दरवेश थे, वो कहने लगे, भाई आओ, मैं एक पल में आप हम सब सारी जन्नत में जाते हैं, एक नियत कर लेंगे, जन्नत में जाएंगे। मैं कहा, हजरत क्या? फरमाया, ये नियत कर लें। अब नियत गौर से सुनिएगा, आज हमने करनी है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया, ये नियत कर लें, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, ना मैं तुझे नाराज करूंगा ना मैं तेरे हबीब को नाराज करूंगा। अच्छा, अगली नियत क्या की? या अल्लाह मेरी जब तक जिंदगी रहेगी, मैं तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, कोई पल मेरा खताओं में नहीं गुजरेगा, हर पल मेरा वफाओं में, नेकियों में गुजरेगा। या अल्लाह मैं मौत तक, मेरी मौत को 100 साल जिंदगी दे या 1,000 साल जिंदगी, मैंने ये नियत कर ली, इसी कैफियत में जिंदगी गुजारूंगा। आप भी कर लें, मैं भी कर लूं। कर लें, कर ली, कर ली नियत, तो क्या मतलब? अल्लाह पूछेगा, क्या लाया? या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, नियत की थी? या अल्लाह की थी। अब कितनी बड़ी बात है, आपने तो हुज्जत दलील बना ली। क्या बना ली, क्या बना लिया? हुज्जत और दलील बना लिया आपने। आपके पास हुज्जत है, या अल्लाह मैंने नियत की थी कि पल भर भी मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, हर लम्हा, हर पल, हर लहजा तुझसे राजी रहूंगा, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तुझे राजी करूंगा। अल्लाह नियतों पे अजीबोगरीब फैसले कर देता है, नियतों पे, सिर्फ जज्बों पे और नियतों, जज्बों पे और नियतों। फरमाया, जो बंदा शरबत का प्याला पी रहा, शरबत की बोतल, शरबत का गिलास पी रहा और चुस्की चुस्की शराब के जज्बे से पी रहा है, शरबत शराब के जज्बे से पी रहा, तो फरमाया अगर वक्त के खलीफा को पता चले तो इसको वो सजा दे जो शराब पीने वालों को दी जाती, उतने कोड़े मारे। क्यों? इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था। जज्बों का जिंदगी पे असर होता है, जज्बों का असर होता है। यहां तक बताऊं, अब हम बैठ के पढ़ते हैं, जरा एक चीज जरा सुन लेना। ये जो शिकारी कुत्ते होते हैं ये सुधाए जाते हैं, कुत्ते में खूनखारी का जज्बा है, चीजों को चीर फाड़ देता है, सुधाए जाते हैं। खरगोश के पीछे कुत्ता भागता है, खरगोश के पीछे भागता है और जानवरों के पीछे ही भागता है। ये खरगोश जब इसके हाथ आता है तो क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको काटता नहीं है, नाखून नहीं लगाता। तो उसको देखा जाता है कि इस पे नाखून, इसके दांत तो नहीं लगे हुए। अगर नाखून और दांत लगे हैं तो समझ लें गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, तरबियत याफ्ता नहीं है। क्यों? कुत्ते के मिजाज में फाड़ना चीरना खून गोश्त का खाना है। जब उसने अपनी तबीयत को मालिक की तबीयत में ढाला, जब उसने अपनी आदत को मालिक की आदत पे ढाला और जब उसने अपनी तबीयत को मालिक के हुक्म के लिए कबूल किया, वहां ये कुत्ता शिकारी बना और बहुत कीमती बना और इसका शिकार हलाल हो गया। अब बोले सिर्फ नियत जज्बा। ये जो बाज शिकरे शाहीन होते हैं ये फाख्ताओं को, बड़े बड़े परिंदों को जाके शिकार करते हैं। तो फाख्ता ये बाज जितनी भी हैं शाहीन, इनके मिजाज में भी चीरना फाड़ना है परिंदों को। तो जो परिंदा जाता है तो सुधाए हुए तरबियत याफ्ता जो होते हैं उनको हुक्म देते हैं, खास आवाज होती है, जाओ इस परिंदे के पीछे। वो क्या करता है, उस परिंदे के पीछे भागता है, वो ऊपर वो नीचे, उसको नीचे गिरा के ऊपर खुद बैठ जाता है, चीरता फाड़ता नहीं और मालिक का इंतजार करता है। अब तो उनके साथ बाकायदा सिम्मी लगी हुई है, क्योंकि ये परिंदे गुम हो जाते हैं, सिम्मी लगी हुई है, उनके ऊपर बैठ जाता है। मालिक जाता है, उस परिंदे को लेता है, उसको पकड़ता है, देखता है इस पे चोंच नाखून तो नहीं लगे हुए। अगर चोंच नाखून नहीं लगे हुए तो समझ लें कि वो बहुत कीमती है और ये लाखों करोड़ों में बिकते हैं। रहीम यार खान की एक गरजमंद की बात भी बता दो। एक गरजमंद था जिसे अल्लाह के लिए खर्च करना था, नफिल पढ़ रहा, रोजे रख रहा, आमाल कर रहा कि अल्लाह गैब से मेरी जरूरतें पूरी कर दे, गैब से जरूरतें पूरी कर दे। उसके बच्चे ने ऊपर कोई कबूतर रखे हुए थे, ऊपर कबूतर रखे तो इनको कबूतरों की ना चीखने और फड़फड़ाने की आवाज आई। छत पे जो भागे तो कहीं से कोई शाहीन आया और कबूतर के शिकार के लिए कबूतर का बना हुआ जो डरबा था, कमरा था छोटा सा, उसमें घुस गया और कबूतर को अंदर शिकार कर रहा था। इन्होंने बाहर से बंद कर दिए, वो अंदर का अंदर। अब इन्हें पता चल गया कि ये है कोई शाहीन शिकरा या चील है, शक्ल एक तरह होती है, चील है। उन्हें कहा चील नहीं है, चील ये काम नहीं करती, ये शाहीन है। खैर हाथों पे कपड़ा चढ़ा जैसे करके कि जख्मी ना हो, उसको पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में डाल दी। अब रहीम यार खान में ये अबू धाबी दुबई वाले शिकार खेलने आते हैं हर साल, और वो ये कीमती चीजें बड़ी कीमत से देते हैं। इनको किसी ने कहा कि उनके जो बड़े हैं उनको दिखाओ तो सही, शायद ये कोई कीमती हो। उन्होंने दिखाया ना, उन्हें कहा तो बहुत कीमती है, आपको कहां से मिला है? हमें तो घर से हमने पकड़ा है, तो बहुत कीमती है ये, तो हमारा जो है वो अरबाब जो बड़ा है अरबी बोलने वाला तो इसको पसंद करेगा, उसके पास ले गए। ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूं कोई गालिबन 30 साल पहले का, उस दौर में 6 साढ़े 6 लाख रुपए उसने दिया था, और इसको जरूरत कितनी थी पता है? इसको जरूरत कितनी थी? मेरे ख्याल में इसको जरूरत 18-19 हजार रुपए की थी, अंदाजा ऐसे है 18-19 हजार ही, या 20-30 हजार की होगी, चलो इतना कह दें, इतना थी। और अल्लाह से जब मांगा, पर मांगने की इंतहा कर दी कि अल्लाह मेरी गैब से जरूरत पूरी कर, अल्लाह तू असबाब का मोहताज नहीं, मैं तो असबाब का मोहताज हूं, तू तो मुसब्बिब अल असबाब है। ये वाक्या मैंने क्यों सुनाया? आप में से कोई बंदा भी जो अपना जिक्र कर रहा, उस जिक्र को जब गिड़गिड़ा के करेगा, और आज बहुत से होंगे जो सूरत तौबा की आखिरी दो आयात की बुनियाद रख रहे होंगे कि हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है, होंगे ना, होंगे ना, इंशाल्लाह होंगे, होंगे इंशाल्लाह होंगे, जो इस अंदाज से पढ़ेगा, जरूरत है हजारों की, और 30 साल तकरीबन पुरानी बात है, और मिला 6.5 लाख, आज का 6.5 करोड़ मिला, और उसकी जरूरत पूरी हो गई, और बाकी पैसे परेशान था कि करूं कहां, क्यों? अल्लाह से मांगा इतना, मांगा इतना, और यकीन से मांगा, और ध्यान से मांगा, और सच्चे जज्बे से मांगा, और सच्चे दर्द से मांगा, और सच्चे विजदान से ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने फिर छोटा फैसला नहीं किया, बड़ा फैसला किया। कहा, बड़ी दुआ बड़े फैसले, छोटी दुआ छोटे फैसले, बड़े जज्बे बड़े फैसले, छोटे जज्बे छोटे फैसले, बड़ी नीयतें बड़े फैसले। ये फिर अल्लाह से फैसला करवा लिए। अब आप भी करा लें, मैं भी करा लूं अल्लाह से फैसले, तो आज 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली, अब उसमें 7 दफा पढ़ेंगे, 7 दफा, 7 दफा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, 7 दफा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 7 दफा, हैं? तो 1 करोड़ में 7 दफा कम हो गया, बाकी बाकी जो है, बाकी थोड़ा सा रह गया, बाकी कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया, देखो ना, 1 करोड़ में 7 दफा तो खत्म हो गया। हंसते हैं, मुझे देख के हंसते हैं, कहते हैं ये कैसी बातें करता है, अल्लाह के लिए कोई देर है? अल्लाह चाहे पल में आनन फानन मेरी दिल जारी कर दे, मेरी जुबान जारी कर दे, मेरा कल्ब जारी कर दे, हाँ बस चले जी। फिर अब दुरूद पाक पढ़ा है ना, अब आपस में ऐसे मिलके इसको 7 दफा पढ़ लें, 4 5 10 इकट्ठे हो जाएं, ऐसे मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़ें, अजीज अली हरीश ला इलाहा इल्लल्लाह वहुवा रब्बुल अर्शिल لقد جاءكم رسول عزيز عليكم حريص عليكم تولوا فكل حسن لا إله ورسول عزيز عليكم حريص فكل حسن لقد جاءكم رسول عزيز حريص فإن تولوا فكل حسن لا إله إلا الله جاءكم رسول مؤمنين رؤوف لقد جاءكم رسول جاء अलैकुम अलैकुम। فكل حسبي الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فكل حسبي الله. माशाल्लाह पढ़ लिया। चलो जी, आपने आज से 1 करोड़ पढ़ने की नियत की, आपको इस नियत में मुबारक हो, इस जज्बे पे मुबारक हो और इस इब्तदा पे मुबारक हो। अच्छा, एक इस पे एक नियत कर ले कि इंशाल्लाह जिंदगी में कभी इस नियत को करने के लिए तस्बीह खाने में 12 लड्डू आके रख दूंगा, 1 लड्डू मन्नत मुराद का खुद ले लूंगा, 11 रखूंगा, जो लेगा वो भी नियत करेगा कि मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं यहां तस्बीह खाने में आके 12 लड्डू रखूंगा, वो भी ये नियत कर ले। आप भी कर ले कि इंशाल्लाह मैं तस्बीह खाने में जो है वो 12 लड्डू रखूंगा, 1 खुद लूंगा, 11 रख दूंगा। क्या ख्याल है, अगर जो हमने पढ़ा है इस पे एक नियत और कर ले, या अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम 1 करोड़ पढ़ेंगे, अपनी नस्लों क्यामत तक की तरफ से पढ़ेंगे और अपने लिए पढ़ेंगे, नियत बड़ी हो गई तो सवाब भी बड़ा, नियत बड़ी बरकत भी बड़ी, और नियत बड़ी तो इंशाल्लाह उसकी अता भी बड़ी। तो कर ली नियत, बाकी कर ली, अब ये सारा सवाब हम पूरी उम्मत के मरहूमीन को हदिया कर दे, अपने प्यारों को, अपने बड़ों को, उनको हदिया कर दे। जब से मैंने ये हदिया कराना शुरू किया है, मुझे लोगों ने कई वाकयात सुनाए हैं, कई मुशाहदात बताए हैं, और लोगों ने कई चीजें मुझे बताई हैं कि जब से आपने ये हदिया कराना शुरू किया है, ख्वाब में आ आ के रिश्तेदार और प्यारे शुक्रिया अदा करते हैं और ख्वाब में आ आ के खुशखबरियां सुनाते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी सआदत है। इसलिए अर्ज क्या करता हूं, अपने प्यारों को ना भूलना, अपने मरहूमीन को ना भूलना, ना भूलना, कभी ना भूलना, उनकी कब्रों को ना भूला करें, जाया करें। फूल लेके जाना जरूरी नहीं, अंदर और नीचे के फूल बहुत जरूरी है। ऊपर के फूल तो खुश्क हो जाते हैं और कब्रिस्तान वाले जमा करके इसको खुश्क बेच देते हैं, अंदर के फूल, वो अंदर के फूल ये कलमा है, दरूद है, आमाल है, सदका है, खैरात है, हदिया है, ये अंदर के फूल हैं जो कभी ना कुमलाते हैं, ना मुरझाते हैं, ना इनकी खुशबू खत्म होती है। तो अब ये तावीज वाला कागज आपके पास है या नहीं है? हैं? ये तावीज का कागज, ये दोनों कागज आपके पास है ना? अच्छा, ये नेट पे भी मौजूद है, आप उसका प्रिंट निकाल लें, और इसका तरीका भी मौजूद है। एक एक चीज वाज़े करके दी गई है और एक एक चीज बाकमाल दी गई है। इस तावीज को लिखते हुए आप 2-3 बातें जरा गौर से सुने और बहुत तवज्जो से सुने। आप 26 मुहर्रम को एक तावीज लिखें, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जितना जी चाहे लिख सकते हैं। इसको लपेट के किसी फलदार दरख्त से लटकाना है, अगर फलदार दरख्त मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दरख्त। इसको टेप कर लेंगे, टेप करने के बाद इसको चमड़े में बनवा लें या लोहे का गिलाफ जो होता है जिसे पटड़ी कहते हैं, लोहे का गिलाफ उसमें बनवा लें। मैंने ना हवेली में इसको लटकाया, गुलहरियों ने इसका धागा काटना शुरू कर दिया, फिर इसको लोहे के गिलाफ में डाल के फिर हमने तारों से लटकाया हवेली में, तो फिर वो उन्होंने नहीं काटा इसको, फिर तारों से लटकाया। अब भी हमारी हवेली के जिम्मेदार हैं, अगर कोई तावीज कहीं देखते हैं कोई गिर गया है तो उसे अदब से उठाते हैं, उठा के फिर से तार से बांध के लटकाते हैं। माशाल्लाह हमारी हवेली के जिम्मेदार इसका बड़ा एहतमाम करते हैं। तो आप भी इसको लिखते हुए बहुत तलब से लिखना है, बहुत तड़प से लिखना है, बहुत जज्बे से लिखना है इस तावीज को। साल के बाद एक दिन आता है और उस दिन की पहले से तैयारी करनी है। और हमारी खुशकिस्मती देखें, हमारे यहां हमारे मुल्क में इसके लिखने का वक्त कब आ रहा है? जुमे वाले दिन, कल है ना, जुमे वाला दिन आ रहा है। आप खुद सोच, और कितनी मुबारक जुमे की साथ, और कितनी बरकत की साथ, और कितनी कबूलियत की साथ। और मैं सारे दिनों का सरदार सैयद अल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है जुमा, बादशाहों का बादशाह है जुमा, सरदारों का सरदार है जुमा। इसको जुमे के दिन लिखना है, जुमे के दिन लिखना है। फिर इसको अगर खुशबू मिल जाए तो इस तावीज को बंद करके खुशबू को इतर थोड़ा सा लगा दे, इतर लगा के इसके ऊपर टेप लगा दे, इतर लगाए इसके ऊपर टेप लगा, टेप लगा, इतर लगाए टेप लगा, बारिश पानी वगैरह से हिफाजत रह जाए। फिर इसको बंद करके फिर इसको लटका दे, इसको बंद करके, और नीचे अपनी हाजत लिखें, नीचे अपनी हाजत लिखें, नीचे अपनी हाजत, हाजत नीचे अपनी लिखें। बहुत बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बाकमाल चीज है, और बहुत पुरतासीर चीज है, अजब चीज है। अच्छा, अब इसको रोज पढ़ने का मामूल कितना बनाएंगे? जिन हजरात ने तो इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया कि हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है, वो तो फिर दिन रात पढ़ेंगे। जिनका पहले से कोई वजीफा तय है और वो पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी जिंदगी में इसको सुबह शाम 7 बार शामिल कर ले, सिर्फ 7। कितनी बार? 7 बार जिंदगी में इसको शामिल कर ले, बहुत कमाल चीज, 7 बार शामिल कर ले। क्या इंशाल्लाह हमने जिंदगी में 7 बार इसको कभी छोड़ना नहीं है, छोड़ना यानी छोड़ना, 7 बार नहीं छोड़, 100% ना छोड़। मैंने आले रसूल का तस्करा किया, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाया इसकी अदना सा फायदा क्या है, क्या फरमाया? बंदे को फकीर से शहनशाह बादशाह बना देता है, भाई इसका इसका एक छोटा सा फायदा है, और बाकी इसके फायदे क्या होंगे? आले रसूल की हस्ती इमाम जाफर सादिक ने यह बात फरमाई, और उनके नाम के साथ सादिक इसलिए आता है, सादिक इसलिए आता है उनके मुंह से हमेशा सच ही निकला है, और सच्ची राहों पे रहे हैं वो, और सच्ची जिंदगी पे रहे हैं, और उन्होंने उम्मत को इंसानियत को सच्ची राहें दी हैं, सच्ची जिंदगी दी है, सच्चे बोल दिए हैं, और सच के अमल बताए हैं, और सच के वजीफे बताए हैं। वो सच्चे थे, सच्चों के सच्चे थे, हमेशा वो सच्चे थे, इसलिए उनके नाम के साथ सादिक आता है, सादिक। और ये मेरी कमली वाले आका कमली वाले की निस्बत है सादिक, वो खुद सच्चों के सच्चे थे। तो वो फरमाते हैं कि इसका जो थोड़ा सा फायदा है वो ये है कि फकीर से शहनशाह बना देता, बहुत कमाल चीज है। और मैंने इब्तदा में एक बात अर्ज की, उसको फिर सुने कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं अल्लाह वाले बादशाह, कोई बादशाह ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी के मामूलात में, उसकी जिंदगी के वजायफ में, उसकी जिंदगी के विर्द में, और उसकी जिंदगी के तरतीब में ये आयत ना हो, कोई भी बादशाह आज तक ऐसा नहीं गुजरा, उनकी जिंदगी में ये थे, ये चीज है, उसकी जिंदगी में शामिल है, उसकी जिंदगी में शामिल है। और फिर मैंने अर्ज किया था कि एक साहब कहने लगे कि मैं बैठा था कब्र पे, उनको हदिया दे रहा था, तो फरमाया मुझे ये दो, और जब ये पढ़ना शुरू किया फिर घंटों गुजर गए, फिर पता ही न चला और कब्रिस्तान के सारे अहवाल मेरी आंखों के सामने खुल गए, खुल गए आंखों के सामने। और एक बात और मैंने अर्ज की, इस वजीफे में दराजी उम्र है, उम्र को दराज करना, उम्र में बरकत इसी वजीफे में यानी इन दो आयात में है, रिस्क इन दो आयात में है, तस्वीर इन दो आयात में है, रिश्तों की तंगियां खत्म करना इन दो आयात में है, और जिंदगी में सहूलतें आफियतें इन दो आयात में है। बहुत अजब चीज है, बहुत कमाल चीज है। तो कल इसकी साथ है, कल इसकी साथ है, और कल इसकी पूरी तैयारी हो, कल सुबह से शाम तक इसकी साथ है, मगरिब से पहले तक, दिन डूबने से पहले तक इसकी साथ है, कल इसकी तैयारी हो, पूरी तवज्जो से लिखना है। अगर खुद खुशबू लगा लें, बावजू हो, किबले की तरफ हो, और खुशबू लगा के बावजू हो के पाक, इसको तवज्जो से लिखना है, और गिड़गिड़ा के लिखना है, और ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखना है। और अगर अल्लाह पाक तौफीक दे, एक तावीज तस्बीखाने की तरफ से भी लिख दे, मेरा मेरी नस्लों का, तस्बीखाने का, और तस्बीखाने के सारे निजाम का, इसको फितनों से हिफाजत का, दाएं बाएं से वसत का, तस्बीखाने का जितना भी अबकरी का निजाम है, एक तावीज उसके लिए भी लिख दे, मेरा कमीशन भी साथ रख ले, मेरा हिस्सा भी साथ रख ले। क्या ख्याल है, हैं? एक हो जाए तो आपकी मेहरबानी है। और फिर लिख के मुझे नहीं देना, वो लुक उसको बड़े एहतमाम से, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, और बड़ी चाहत से, और बड़ी तलब से, और बहुत बड़े अदब से उसको फिर लटकाना भी है, उसको फिर लटकाना भी है। क्या ख्याल है, जाग रहे हैं? करेंगे? आए फिर एक और तोहफा देता हूं, एक और चीज देता हूं। हब्स के इन दिनों में ना एक काम करें आप, हब्स के जो दिन है इसमें एक काम करें, और ये इन्हीं दिनों में बहुत जरूरी है, और सारा साल अशद जरूरी है। एक चटनी बनाए, चटनी में सब्ज पुदीना, अदरक, अनारदाना और लहसुन, बस चार चीजें, सब्ज पुदीना, अदरक, अनारदाना और लहसुन, ये चारों चीजें हम वजन लेकर इनको खूब पीसें, ग्राइंड कर लें, ब्लेंडर में पीस लें, बाजुकात वो डोल और बाल्टी का ग्राइंडर होता है, अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो कर लें, अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो बनवा लें, वरना छोटे छोटे होते हैं इसमें पीस लें। ये बरसात के मौसम का एक तोहफा है, और शुगर वाले मरीज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, और ऐसे मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, मोटापा, एलर्जी, दिल के वाल, बीमारी के बाद सेहत, खिंचाव, कमर जोड़ों का दर्द, मेदे की तेजाबियत, गैस, बाती, तबखीर, इसके लिए जबरदस्त चीज, कमाल चीज, बहुत जबरदस्त चीज। क्या करें, इसको इकट्ठा बना लें, तरीका मैं बताता हूं, इकट्ठा बना के ना इसकी क्यूब्स बना लें, ये जो जिसमें बर्फ जमाने वाली नहीं होती है छोटे छोटे, ये सांचे कहूं मैं, फ्रिज में उसमें भर के रखते, फ्रिज में रखते। एक निकाला, उसको घोलवाया और चटनी उसकी खाने के साथ खा ली, या ऐसे खा ली। बहुत जायकेदार चीज भी है, मेरे तो मुंह में पानी भर आया। आप छुपाना चाहें छुपा लें, आप नीचे बैठे मैं तो नहीं छुपा सकता, बहुत कमाल चीज है। इस वक्त जो हमारी गिजाएं हैं गैर फितरी गिजाएं अमूमन हैं, मिजाजों में गैर फितरी गिजाएं हैं, गैर फितरी गिजाएं हैं, या ऐसी गिजाएं हैं जो जहरीली पानी और जहरीली खादों से बनी हुई हैं। उनको फितरी जिंदगी दें, पुदीना, अदरक, लहसुन। अगर पुदीना देसी हो, अदरक देसी हो और लहसुन देसी हो, अगर मिल जाए तो और नेमत है। और अनारदाना, इनको खूब कूटें, हल्का सा पानी डालें, इनको बेहतरीन बना के इनको जिंदगी में शामिल करें। जहां बड़ी बड़ी दवाएं नाकाम हो जाती हैं, यहां ये दवा ऐसी जाके निशाना लगती है। आप चाहते हैं आपका पेट वेट ना बढ़े, खास तौर पे मैं लाहौर वालों से अर्ज करूंगा वो इसको जरूर इस्तेमाल करें, उनको बड़ा फायदा होगा। क्योंकि लाहौर, लाहौर और ला और ला, लाहौर में एक साहब सेहरी कर रहे थे, बड़ा सारा कटोरा था वो निहारी का भरा हुआ था, निहारी ना दुख रहे ना बीमारी, तो भरा हुआ था। अजाने हो गई, कटोरा खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, फिर इतना बड़ा कटोरा था, सख्त गर्मी थी, वो पानी का भरा हुआ था, ठंडा पी रहे हैं, पसीना नाक से मुंह से पानी निकल रहा है, अजाने हो रही हैं, खा रहे हैं। तो एक बाबा जी थे, वो कहने लगे, है कोई जो इस बंदे को रोक के दिखाए, है कोई जो इसको रोक के दिखाए कि अजाने हो रही हैं। और वो पता है क्या कह रहे हैं, आखिरी अजान पे खत्म कर दूंगा, और कटोरा सारा समेट उसको उंगली से साफ कर, और वो जो बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी, और उसके बाद कहा कि अब रोजे की नियत मैंने कर ली। तो खास तौर पे लाहौर वालों को इसका बड़ा फायदा होगा, इसको बहुत फायदा होगा और इसका बहुत नफा होगा, इससे बहुत फायदा होगा। गुजरांवाला, लाहौर, ये पट्टी जो है इसमें बहुत किफायतशार एहतियात वाले लोग रहते हैं, सोच समझ के खाते हैं, बहुत थोड़ा सा ऐसे ऐसे। मैं अभी कराची में था तो कराची के महफिल में एक जगह कुछ मेहमान इकट्ठे थे, बहुत सारे, तो वो सारे मेहमान इकट्ठे थे, तो 70 क्लिफ्टन जहां भुट्टो मरहूम का घर था उसके साथ खाने थे, हर बंदा थोड़ा थोड़ा ऐसे खा रहा था, थोड़ा थोड़ा खा रहा था, उसके बाद फिर मुंह में छा लिया और वो चीजें मुंह में हर बंदे ने रखी, थोड़ा थोड़ा खा रहा था, और मैं पछता रहा था कि दो चार बंदे और लाहौर से ले आता, ऐसे थोड़ा खा रहे थे, खानों की लेने लगी हुई थी, खाने थे जो बस तू पूछना, तू पूछ, खुद पूछना बस। और मैं वो बेचारे एहतियात से खाते हैं, कराची वाले बड़े माशाल्लाह, सारे मेहमान थे तो थोड़ा थोड़ा से खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा। तो मैं पछताता रहा कि मैं कि कोई लाहौर वाले ले जाते इनका रिस्क, तो चलो कोई बताता कि है खाने वाला। हमारे एक दो सूखे बंदे हैं, एक दो बिल्कुल कमजोर आदमी है, वो 6-7 रोटी कोई मसला ही नहीं है, लंगर खाने की रोटी तो डबल रोटी होती है उनके लिए, 5-6 रोटी का मसला नहीं। एक दो बैठा हुआ था तो वो कोई बर्फी थी, पता नहीं क्या चीज था, ऐसे हाथ मार के खा, मैं कोई खुदा का वास्ता मन चुप कर मेरी, इनको खाने दे। वो खाता नहीं है, वो निकलता है, आंते खुद बखुद इतनी तेज है और सारा निजाम सेट कर, और उसका पेट ऐसे हड्डियों के साथ लगा हुआ है और पता नहीं कहां जाता है, इस्तग़फ़ार पता नहीं कहां जाता। शिकम फकीरा तगारे खुदा, हमा चीज आया था, फना दर फना, फना दर फना। अल्लाह, एक साहब खुश बिल्कुल कमजोर से हैं, सूखे हैं, 6-7-8 रोटियां कोई मसला नहीं, बीमार हो गए हैं। वो कहते हैं मैं बीमार हूं, एहतियातन बीमार हो हैं, ऐसे अल्लाह के नाम। एक है कलंदर, एक है कुल अंदर, समझ करें। एक कलंदर तो एक रूहानियत का मकाम है ना, वो तो कलंदर हुए। एक है कुल अंदर, कुल अंदर वाले भी हैं मेरे पास, कुल अंदर भी हैं, बीमार हैं। अभी हजरत साहब बीमार हैं, 6-7 रोटियां कोई मसला नहीं। अभी हजरत बीमार है, अभी सामने बैठ के मुझे हंस रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, फिर आप देखना शुरू हो जाएंगे, हंस रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो चटनी बनाएंगे ना, क्यों? अब नियत सुने, जो हर दफा मैं नियत करवाता हूं, सुने। या अल्लाह मैं तंदुरुस्ती इसलिए हासिल करूंगा कि इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके तेरी मखलूक को राजी करूंगा। या अल्लाह मैं तंदुरुस्ती इसलिए हासिल करूंगा कि ये जो चटनी से मुझे तंदुरुस्ती मिलेगी, इससे तेरी इबादत करूंगा और तुझे राजी करूंगा और खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। अल्लाह मैं इसलिए सेहतमंद रहूंगा। हमारी तंदुरुस्ती का जज्बा भी यही हो, हमारी तंदुरुस्ती का जज्बा भी यही हो कि हमने इसलिए तंदुरुस्त होना है, हमारा जज्बा भी यही हो। यह कोई 30-40 बीमारियों का इलाज है यह चटनी, बहुत बहुत इसके फायदे हैं। और अबकरी में कई दफा छप चुका है इसका टोटका नुस्खा, और कई दफा इसका फायदे छप चुके हैं, कई बार छप चुके हैं। आप में से किसी ने आजमाई है चटनी? नहीं आजमाई होगी, आपने नहीं आजमाई। अब इंशाल्लाह आजमाएंगे, ठीक है, आजमाएंगे ना। अच्छा, एक तो ये हो गई, अब एक और चीज है, वो ये है कि मैं हर दफा जो ऐलान करता हूं और दरखास्त करता हूं कि मुझे तस्बीह खाने का चंदा दें, तो वो कहां गया बताएं, वो कहां गया? दो नफिल हाजत के दुआएं, हामीम ला युनसारून, वो कहां गया? उसका क्या बनेगा? हाँ जी, मेरा चंदा के अल्लाह, और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 के अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत दे। इस मरतबा एक खुशखबरी सुना रहा हूं, सुने खुशखबरी। इस मरतबा हिजबुल बाहर का चिल्ले करने वालों को, हिजबुल बाहर का चिल्ला करने वाली जो जिन्होंने पूरा किया होगा, 3 दिन का चिल्ला है, बहुत आसान है, हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से लंगर भी देते हैं, रिहायश भी देते हैं, सहूलत भी देते हैं, अल्लाह हमारे जज्बों को कबूल करे। जो भी हिजबुल बाहर का चिल्ला करेंगे, उनको मैं हाथ का, अपने हाथ का लिखा हुआ हिजबुल बाहर का नक्श दूंगा, जाते हुए हाथ का लिखा हुआ, प्रिंटेड नहीं, फोटोकॉपी नहीं, मोहर नहीं, स्टैंप नहीं, हाथ का लिखा हुआ मैं उन्हें नक्श दूंगा, हिजबुल बहर का अपने हाथों से दूंगा। जो बंदा भी यहां, माशाल्लाह दुनिया आती है चिल्ला करने के लिए, जो भी हिजबुल बहर का चिल्ला करेगा, मैं उसको अपने हाथ का लिखा हुआ नक्श दूंगा। और अगली जुमेरात से एतवार तक इंशाल्लाह रूहानी क्लास और हिजबुल बहर का चिल्ला होगा। अगली जुमेरात से एतवार तक रूहानी क्लास भी होगी, और क्या होगा, हिजबुल बहर का चिल्ला भी होगा। और हमारी ये रूहानी क्लास कौन सी होगी, 7वीं 8वीं 9वीं, कौन सी 9वीं क्लास होगी? शायद 8 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जिसमें मैं अमलियात सिखाता हूं, खुद भी सीखने वाला हूं। तो ये अगली जुमेरात से एतवार तक इंशाल्लाह रूहानी क्लास, हिजबुल बहर, ये सारी चीजें होंगी। चांद शायद 29 का हो या 30 का हो, इंशाल्लाह अगली जुमेरात ये सारी सआदतें और ये सारी तोहफे और ये सारी नेमतें होंगे। तो फिर आप मेरा निजाम चंदे वाला बाकी रखेंगे ना, करेंगे। और ये मैंने आपको تین نقش اپنی زندگی میں شامل کریں، ایک نقش یار غار، نقش یار مزار، ایک نقش دریائے نیل، دریائے نیل، اور تیسرا نقش کون سا ہے؟ حزب البحر. یہ مہینے کے بعد ہوتا ہے دریائے یار غار یار مزار کا نقش مہینے کے بعد ہے، اور دریائے نیل کا نقش جو رزق اور دولت اور روحانیت کے دریائے نیل چاہتا ہے نا، وہ دریائے نیل کے نقش پہ توجہ کرے، میرا اشارہ ہے. اور ابکری رسالے میں یہ چیز چھپ چکی ہے، دریائے نیل کا نقش، اس کی ترکیب ابکری رسالے میں چھپ چکی ہے، ابکری میں چھپ چکی ہے. اور ایک نقش مستقل میں نے جس کو جمعراتوں میں بیان کیا، وہ پانی میں بہانے والا نقش ہے، یاد ہے؟ وہ میں نے نیٹ پہ ڈال دیا ہے، پانی میں بہانے والا نقش. یوں لکھو، گھلنے والی سیاہی سے، زعفران سے یا زردے کے رنگ سے، اور پانی میں ڈالو، نیچے اپنی حاجت لکھو. حیرت انگیز طور پہ اللہ کا نظام چلتا ہے. آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بغیر اسباب کے پانی والے نقش کی وجہ سے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں. عجیب فتوحات ہیں، انوکھی فتوحات ہیں اس نقش کے ساتھ، انوکھی برکات ہیں اس نقش کے ساتھ، حیرت انگیز کمالات ہیں اس نقش کے ساتھ، حیرت انگیز کمالات بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے اور حلقہ کشف المحجوب ہے، وہ انشاءاللہ 11 اگست اتوار بعد نماز فجر ہوگا. ڈبہ دم والا پہلے سے لے لیا کریں، اس میں نقش عمل پہلے سے بہت اہتمام سے کر لیا کریں، بہت اہتمام سے. ماہ سفر میں سورۃ قریش کا 40,000 70,000 سوالات میں بتایا کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہے وہی رنگا جاتا ہے ماہ سفر میں. سورۃ قریش اور اس کی اختتامی دعا 12 ربیع الاول کو ہوگی. اس کا ہدیہ لنگر اپنے ہاتھوں سے لا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. اور ہمارا انشاءاللہ 21 نومبر جمعرات سے 24 نومبر سوا عرب درود پاک کا چلہ حجویری محل میں، اس میں برکت والے انوکھے پیکج، حیرت انگیز برکات ہیں، اس کی ابھی سے تیاری اور ترتیب بنائیں، ابھی سے اس کی ترکیب بنائیں. اور جو شخص تنہائی کی 5 دعائیں لینا چاہتا ہے، وہ اپنے طبی روحانی تجربات، کوئی نقش تعویز کا فائدہ، کسی دم کسی ورد کا فائدہ تفصیل سے لکھے اور پہنچائے. روحانیت کی تنہائیوں کی دعائیں الحمدللہ وہ لے گا. مجمع جب ہٹتا ہے تو پارکنگ کا خیال کریں، راستے بند نہ ہوں. ہمارے وارڈن مجمع میں بہت توجہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، سارے خدمت والوں کو. اور اگر آپ سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں نا، تو تسبیح خانے میں 3 دن کا روحانی چلہ کریں، جمعرات عصر سے لے کر اتوار ظہر تک مرادیں پوری ہوتی ہیں سویا ہوا نصیب. اور جو شخص عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرے تسبیح خانے میں، بہت خوش قسمت ہوگا، بہت خوش قسمت ہوگا. عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، وہ بہت خوش قسمت ہوگا. اور ہر پل ایک جذبہ لے کے چلیں کہ میں دوسرے کے موبائل پہ اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کراؤں گا. کیوں؟ اس کو خیر ملے گی، اللہ پہلے مجھے دے گا، دے گا اللہ، دے گا اللہ پہلے مجھے دے گا. بعض لوگ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی، ناواقفیت ہے. اس کے لیے ہم نے اپکری لائبریری میں، جو اپکری سائٹ پر اپکری جادوئی لائبریری ہے ہماری ویب سائٹ پر، 1,000 سے زیادہ لنک جمع کیے ہیں انگریزوں کی کتابوں کے، کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد ہوا تو پھر ان کے ساتھ کیا حال ہوا. خواتین بچوں کو حوصلہ افزائی کیا کریں، آنے والے بچوں کو کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں، محبت دیا کریں. اور جو بچے لاتے ہیں وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں، خود خیال کریں اپنے بچوں کا. بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں کہیں خدا نہ خواستہ بچوں کا نقصان نہ ہو جائے. بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں. مایوس اور دکھیارے لوگ حویلی میں جا کے سورت کوثر کا چلا کرتے ہیں. جب سے سورت کوثر کا چلا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت قبولیت ملی ہے, بہت برکتیں ملی ہیں اور بہت خیر ملی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حبس کی وجہ سے جنریٹر کا لوڈ بڑھ گیا ہے, بڑا جنریٹر اللہ سے منوائیں اور مجھے صرف اس کی اطلاع دیں کہ اس کی کہاں سے ملے گا, کیونکہ ہب کی وجہ سے ہم نے پنکھوں کا لوڈ زیادہ ڈالا ہے تو جنریٹر کا لوڈ بڑھ گیا ہے. اس کو ابھی سے اللہ سے منوائیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے. انشاءاللہ آج دعا دعا کے بعد نماز نماز کے بعد ایک نکاح بھی ہوگا. خوش قسمت ہیں جن کی نکاحوں کے کھانے میں, شادیوں کے کھانے میں غریب لوگ شامل ہوں, غریب رشتہ دار شامل ہوں. اور اس سے بڑا خوش قسمت بھی اور بھی ہے دوسرا, جس کی نکاح اور شادیوں کے کھانوں میں پیسے نہ لیے جائیں, وہ اس سے بڑا خوش قسمت ہے. غریبوں کو شامل کیا کرے. اب بیٹھ کے ذکر خاص پوری توجہ پورے دھیان سے ہوگا, ڈوب کے ہوگا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, غور سے سنیں, توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں. یہ ذکر خاص وہ سعادت اور تحفہ اور نعمت ہے, یہ ذکر خاص وہ سعادت تحفہ اور نعمت ہے, یہ ذکر خاص کہ نسلوں سے صدیوں سے جب بھی انسانیت کو کوئی پریشانی ہوئی, کوئی مشکل ہوئی, کوئی دکھ ہوا, تو یہی ذکر خاص کیا, مل بیٹھ کے پھر اس کے وسیلے سے گڑ گڑا کے دعا مانگی, ہمیشہ دعائیں قبول ہوئیں. تو اس کو دھیان سے کرنا ہے, ڈوب کے کرنا ہے. تھوڑا سا پڑھیں پر دھیان سے ڈوب کے پڑھیں, اور بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو بانٹتے رہیں, کھڑے ہو کے نہ بانٹیں. اور اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر, مراقبہ اور پھر دعا ہوگی. پوری توجہ سے اس کو ڈوب کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. يا الله يا عزيز يا وهاب یا کریم یا حی یا قیوم, حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر.
اللهم يا قاضي الحاجات، يا دافي البليات، يا حل المشكلات، يا كافي المهمات، يا شافي الأمراض، يا منزل البركات، يا رافع الدرجات، يا مسبب الأسباب، يا مجيب الدعوات، يا مانع الخائفين، يا خير الناصرين، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مفرح المحزون، رب إني مغلوب فانتصر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد، آمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بہت توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اسم ذات اللہ کا ذکر اور اللہ کے دھیان سے، باواز بلند پورے جذبے سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، باواز بلند پورے جذبے سے. ذکر کس کا اور دھیان کس کا؟ اور جذبے کے ساتھ باواز بلند کرنے ہے، اور پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگی. جتنا جذبہ جتنی طلب اتنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ جھولیاں بھر، مرادیں پا اور برکتیں پا کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ 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 لا اللہ 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 الله 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 آمین آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار وادخل الجنة مع الابرار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم باقية كباقية الوليد اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما آقا ہماری حاضری قبول فرما ہمارے قدم قدم کو قبول فرما ہماری سانس سانس کو قبول فرما ہمارے ہر لمحے کو قبول فرما اس قبولیت کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا دے ہمارے سارے کام بنا دے ہمیں کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے اور کامل اخلاق دے دے اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما برکت اور عافیت عطا فرما برکت اور عافیت عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے جتنی بھی تیری بندیاں اور بندے دور پرے سے دعاؤں میں آمین کہہ رہے اللہ ان کی سسکیاں ان کا رونا ان کا گڑ گڑانا ان کا بھیکاری بننا ان کا اس انتظار میں رہنا ان کا اس انتظار میں رہنا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی آج شب جمعہ ہے تسبیح خانے میں ساری فریادی جمع ہوں گے تسبیح خانے میں رونے والے گڑ گڑانے والے جمع ہوں گے آج ہم بھی رونے والوں میں شامل ہو جائیں ان گڑ گڑانے والوں میں شامل ہو جائیں ان بھکاریوں کی صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں تو ہماری بھی سنی جائے گی ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی ہماری بھی فریادیں دور قبول ہوں گی اے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے سب کی دعائیں قبول کر لے اے اللہ جو مانگا عطا کر دے جو نہیں مانگا عطا کر دے بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما دنیا دے دے رزق دے دے صحت دے دے بیٹے دے دے اولاد دے دے نسلیں دے دے راحتیں دے دے رحمتیں دے دے عافیتیں دے دے دنیا آخرت کی خیریں دے دے دنیا آخرت کی برکتیں دے دے ہمارے پل پل کو قبول کر لے تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے غیبی نظام متوجہ فرما غیبی نظام متوجہ فرما غیبی نظام متوجہ فرما غیب سے ساری دروازے کھول دے غیب سے سارے مسئلے حل کر دے اور غیب سے ساری ناکامیاں دور کر دے اللہ ہمارے ہر سانس کو قبول کر لے اور جتنے اس مجمع میں تیری بندیاں بیٹھی ہیں بندے بیٹھے ہیں ان کے ہر آمین کو 70,000 آمین کی طرح قبول فرما 70,000 آمین کی طرح قبول فرما اور اس آمین کو 70,000 برکتوں کے ساتھ جوڑ دے 70,000 رحمتوں کے ساتھ جوڑ دے اور 70,000 مرادیں دے دے 70,000 مرادیں دے دے اور 70,000 برکتیں دے دے اور 70,000 ضرورتیں پوری کر دے اور 70 نسلوں کو در در کا بھکاری ہونے سے بچا دے اللہ کریم آقا سخی آقا تیرے بندوں نے 1 کروڑ دفعہ سورت توبہ کی آخری دو آیات کی آج بنیاد رکھی ہے ان کو تو ہی پوری کرائے گا اللہ تو ہی پوری کرائے گا اللہ پوری بھی کرا اللہ اس کی تاثیر بھی دے اللہ اس کا فائدہ بھی دے دنیا آخرت میں نفع بھی دے اور دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرما اللہ اس وظیفے سے تو حج عمرے ہوتے ہیں اس وظیفے سے دنیا آخرت بنتی ہے اس وظیفے سے خیریں اور برکتیں ملتی ہیں مولا کسی کو محروم نہ فرما مولا کسی کو محروم نہ فرما سب کو عطا فرما دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما قبول کر لے محبوب کر لے منظور کر لے بس بن مانگے دے دے بس بن مانگے دے دے، بس بن مانگے دے دے، جو ابھی مانگا دے دے، جو آئندہ مانگا دے دے، جو پھر مانگا دے دے. آمین آمین آمین. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطراته وأهل بيته وإطراته وأهل بيته وإطراته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.